आगे सूरत शोरा, शायर की जमा, पोइट्स। ये है वो सूरत जिसमें एक तो अल्लाह के नबी सल्लम पे शायर होने का इल्जाम था, उसको काटा गया है, बिल्कुल एंड पे आएगा, और आपको अपने रिश्तेदारों को नसीहत करने का हुक्म दिया जा रहा है। 227 आयते हैं, लेकिन एक एक लाइन में तीन तीन आयते भी हैं। गोया के क्वांटिटी और क्वालिटी का बैलेंस है। आइए देखते हैं। और ये मक्की सूरतों में वो दौर है कि जब नबी सल्लम पे रात जाते इल्जाम थे, और पूरे पारे में आप देख ही रहे हैं, सूरह फुरकान खत्म हुई और अब इसमें भी वही मक्का का माहौल। और इस पूरी सूरत का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? नबियों के किस्से और हजरत मूसा का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 1 आयत 1 से 9। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेलौस तड़प, और साथ ही इसके लिए ब्रैकेट में लिख लें, जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। ये नबी से बात शुरू हुई है, सारे नबियों के नाम के साथ ये जुमला आपने लिखना है कि नबियों ने अपने दौर में कैसे जिहाद किया। तौसीम मीम हरूफ मुकत्ता है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये आयतें रोशन किताब की हैं, इनके ईमान ना लाने पर शायद आप तो अपनी जान खो देंगे, और अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते कि जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती। और इनके बस रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई, ये इससे रू गर्दानी करने वाले बन गए। इन लोगों ने छुटलाया है बस, सब इनके पास जल्दी से इसकी खबरें आ जाएंगी, जिसके साथ वो मस्खरापन कर रहे हैं, यानी मजाक कर रहे थे। क्या उन्होंने जमीन पर नजरें नहीं डाली कि हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े किस कदर उगाए हैं, और बेशक इसमें यकीनन निशानी है, और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं है, और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है। ईमान से मुतल्लिक दो आयतें, शोरा 3। ये वही मजमून है जो पीछे सूरत कहफ में गुजरा। लाल लकबाखियुन नफ्स का अल्लाह यकूनु मुमिनीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत, इसको महसूस कीजिए। किसी को काफिर, फाजिर, जहन्नमी होने की धमकी देकर या गाली देने से पहले जरा इसको सोच लें। कभी नबी ने गालियां नहीं दी अबू जहल को, कभी अबू लहब को और अबू तालिब को और अब्दुल्ला बिन उबई को बुरा नहीं कहा। ये दिल की नरमी मांगी है। यही फिर फ्यूल बनेगी और यही फिर इंसानियत के लिए आपसे काम लेगी। फिर आयत 8 शोरा, कायनात की निशानियों से रब कायनात को पहचानिए। लिखिए यहाँ बखा की बात, एक मतलब जिबा, यहाँ बख है, बस एक ही वजन है। अरबी में जो वजन एक होता है ना, तो उसमें मानी में मुमासलत भी होती है। तो जब तक बखा की कैफियत नहीं होगी, दिन रात दावत इल्लाह का काम नहीं होगा। पैसा इतना बड़ा मोटिव नहीं है कि बंदे से दिन रात काम ले, छुट्टियों में भी ले, बगैर छुट्टियों के भी ले। बखा, मेरे पास खाना है और लोग भूख से मर रहे हैं, मेरे पास कुरान का इल्म और लोग ले नहीं रहे, मेरे पास लोगों के, इंसानों के दुखों की दवा है, इनके डिप्रेशन, इनकी मईशत जनका से निकलने का नुस्खा, लोग ले नहीं रहे। मैं इनको किसी तरह बुला दूं, बोल के बता दूं, मैसेज कर दूं, किसी तरह कर दूं, कोई शेयरिंग दे दूं, कोई फीडबैक इनको सुना दूं, कोई किसी के करते हुए काम की तस्वीरें इनको ऐसा शेयर कर दूं। ये बखा मांगी, ये लिए दिए रहना नहीं अच्छा होता। बखा इससे ऑपोजिट है, यानी जिसमें बखा होती है ना, वो नहीं कहता ओके माइंड योर बिजनेस, रिलीजन इज ओके, अच्छा ठीक है। आपके नेबर में आग लगी हो तो आप बैठे रहेंगे? आप कहेंगे ये आग मेरे घर तक आएगी? आज उम्मत मुस्लिमा ने ये बखा छोड़ा, और इस बखा को लोगों को दीन देने की जगह कहाँ यूज किया? माल, दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, दिल दुनिया में। वही बात है, नफ्स परस्ती नहीं, माल परस्ती, हुब परस्ती, घर परस्ती, दौलत परस्ती, मन पूजा, वो पूजा, और ये पूजाओं ने आज हमें अल्लाह के काम का छोड़ा ही नहीं, अधूरा कर दिया। टाइम ही नहीं, हमारे पास वक्त ही नहीं है। इधर से जाते हैं, वो कहते हैं ना, कपड़ा इधर से पकड़ते हैं तो उधर से कम हो जाता है, खींचतान लगी हुई, भागते दौड़ते कुछ दीन की खिदमत कर ही लेते हैं, कमिट करते हैं वीकेंड की, फिर हमारी जॉब का कोई दिन आ जाता है। सुबह की करते हैं तो सुबह में कुछ मसला आता है, शाम की करते हैं, कितनी दफा वादे करके तोड़े और फिर शर्मिंदा हुए। क्यों नहीं लोग कमिट करते, आपको पता नहीं, बाद में मसला हो जाएगा, नहीं ऐसे में फिर मेरी वीकेंड पे भी जॉब हो। भाई आपका वक्त कब होगा? वीकडेज नहीं मैं जॉब करती, नहीं वीकेंड पे मैं, ये होता है रात है, ये वही बात है कि ऊँट पे बैठो कोहान का डर है, कश्ती पे बैठो तूफान का डर है। तो दीन की कश्ती में या दीन की कोहान पे फिर कब चढ़ेंगे? ये उम्मत मुस्लिमा के आज का सवाल। जिहादे कबीर आज के दौर का यह कि लोगों को दुनिया की मोहब्बत और माल से निकाल कर वो जन्नत की खूबसूरतियां दिखाई जाए, ताकि उनकी उधर रग़बत आ। फेथ इन एक्शन क्या है? कि अपनी और दूसरों की हिदायत की फिक्र करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी तड़प दिल में रखनी है, कुरान पढ़कर जो बात समझ आए इसे फौरन अपना लेना, बाद में नहीं होता अमल, अभी करें। आप में से न्यू लिसनर्स, जिस आयत में जो हुक्म आ रहा है फौरन चुपके से अल्लाह को कह अल्लाह मैं अमल करूंगी, थोड़ा कर ले। सदके क्या था, एक पैनी जाकर जाते हुए डाल दे मस्जिद में, $1 डाल दें, किसी नेकी के काम में डाल दें। अल्लाह ने आपके लिबास हिजाब की बात की, अच्छा अल्लाह आप जरा सी 1 इंच बाजू लंबी कर लूंगी, अच्छा अल्लाह आप जरा मेरी कमीज 1 इंच लंबी हो जाएगी, अच्छा जरा दुपट्टा मोटा कर लूंगी, अच्छा बाहर जाते हुए जरा ये, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाए, अल्लाह ताला आपके लिए बाद में बहुत सारे काम आसान करेगा इंशाल्लाह। गलत रस्मों पर जिद और हठधर्मी की वजह से कायम नहीं रहना। आगे देखते हैं मूसा का जिहादन कबीरा क्या था। रुकू नंबर 2 है 10 से 33, और यहाँ वो हदीस ज़हन में रखिए कि बेहतरीन जिहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमाए हक कहना। ये एक रिवायत आपने बचपन से सुनी हुई है, आइए देखते हैं। वइस नादा रब्बुका मूसा अनितिल कौमत ज़ालिमीन, और जब आपके रब ने मूसा अलैहि सलाम को आवाज दी कि तू जालिम कौम के पास जा, फिरौन के पास, क्या वो परहेजगारी ना करेंगे। मूसा अलैहि सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार मुझे खौफ है। नोट करिए पीयर प्रेशर उस दौर में भी था। अगर आज आप कहते ना 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 हमारे बच्चों ने तबलीग कर दी तो ये हो जाएगा, हमारे बच्चे जिहाद पे चलेंगे तो ये होगा, तो इस जुमले को याद रखिए। अगर मूसा रुक जाते फिरौन के खौफ से तो फिर बनी इसराइल की निजात कैसे होती। और खौफ क्या था कि कहीं वो मुझे झुठला ना दे, और मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी जुबान नहीं चल रही, बस तो हारून की तरफ भी वही भेज, और इनका मुझ पर मेरे कसूर का दावा भी है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मार ना डाले, यानी मेरा वीजा ही ना कैंसिल कर दे, मुझे डिपोर्ट ही ना कर दे। वाकया पीछे आप सुन चुके हैं सूरत कसस में, कत्ले खता हुआ था उसकी तरफ इशारा है। पता चला कि इंसान के गुनाह हैं जो उसको कई दफा नेकियों से रोक लेते हैं। जनाबे बारी ताला ने फरमाया हरगिज ऐसा न होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों फिरौन के पास जाकर कहो कि बिला शुबा हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं कि तुम्हारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था। नोट कीजिएगा अभी इबादुर रहमान का क्या वसफ था, ताने नहीं देते, फिरौन ताने दे रहा है कि तू हमारे ही टुकड़ों पे पला। फिरौनियत थी और दिल में बड़ाई थी ना, और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे, फिर तू अपना वो काम कर गया जो कर गया, और तू है ही ना शुक्रों में से। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इस काम को उस वक्त किया था जबकि मैं राह भूले हुए लोगों में से था। नोट करें इस जुमले को, डोंट डिफेंड योर सेल्फ। हाँ, तुम तो पहले ऐसी होती थी अब ये हो गई, याद नहीं तुम क्या करती थी। हाँ भी करती थी, ये जो मुहावरे हमने बिल्लियों के नाम पे बनाए हुए ना उनको काट दें, ये हज का भी मजाक है, बिल्ली का भी मजाक है, और चूहों पे भी जुल्म है। कभी किसी को पिछली जिंदगी का ताना ना दे, और अगर आपने पिछली जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं पहना तो क्या वो नहीं पता था, पता लग गया, ये तो और बुरी बात है ना, पता लगने के बाद वही करें। आपको तो अमेरिका के लॉ में कन्फेशन है, आपसे कोई गलती हो जाए, ट्रैफिक रूल्स टूट जाए, आप जाके के सॉरी गिल्टी छोड़ देते हैं, तो आप क्यों अपने आप को मुजरिम बनाते हैं कि मैंने नहीं किया, नहीं मैं तो जद्दी पुश्ती आलिमा और फाजिला और मेरे अब्बा और मेरे फलां से थे। हजरत मूसा कह रहे यस था, मुझे नहीं पता था उस वक्त, और उनसे तो कत्ले खता हुआ था, फिर तुमसे खौफ खाकर मैं तुमसे भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म अता किया और मुझे पैगम्बरों में से कर दिया, और मुझ पर तेरा क्या है, यही वो एहसान है जिसे तू जतला रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा। ये है इंटेलेक्चुअल जिहाद, जा है तुम भी जिहादन कबीरा। आज हमारी यूथ को और नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहने वालों को इस कॉन्फिडेंस की जरूरत है। रेज द वॉइस फॉर योर राइट्स, अहले गजा के लिए आवाज उठाइए। ये है आज का इंटेलेक्चुअल जिहाद। जब इजाजत नॉन क्रिश्चियन को तबलीग की है तो मुस्लिम को भी ये जाइए। दुनिया में ऐसी जगह मौजूद है कि जहाँ खड़े होकर कोई मजहब वाला अपने दूसरे को बुला सकता है, आज आप ये करके तो देखिए, अल्लाह गजा वालों के ऊपर सख्तियां कम कर देगा। ये हमारी की किसी और पे आ रही है, हमारी ना समझी हमारी, लेकिन गलती को एक करता है तो ड्राइवर की गलती है तो 10 लोग भी जाएंगे, 4 भी जाएंगे। ये उम्मत मुस्लिमा की गलतियां हैं जो गजा वाले भुगत रहे, क्योंकि उनका ईमान इस काबिल है कि वो ये कर सकते हैं। तो मूसा अलैहि सलाम ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहा ठीक है जो भी है वो हो गया, ये हुआ। फिरौन ने कहा रब्बुल आलमीन क्या चीज है, मजाक उड़ा रहा है हजरत मूसा का। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया वो आसमान और जमीन और इनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखते हैं ना, बिल्कुल नहीं डर रहे, बिल्कुल नहीं थबक रहे। आप देखें ना UNO में कौन सा मुस्लिम जाके बात करेगा, वहां जाहिदुम भी जिहादन कबीरा कौन सा मुस्लिम लीडर करेगा, जिसको खुद इस्लाम पे मान होगा, जो कॉन्फिडेंट होगा, जो इनकी जुबान जानता है, जिसको यहाँ के मैनर्स आते हैं। तो जो अपने ड्रेस कोड पे फख्र कर रहा है, तो जो इस्लाम पे फख्र करेगा वो जाएगा। तो बी कॉन्फिडेंट मुस्लिम। आप बुद्धू और बेकार किस्म के मुसलमान बच्चे ना पैदा करें, सर उठाकर जियो। अपने दीन पे फख्र किया, अपने बच्चों को इस्लामी कपड़े पहनाइए, अपनी बेटियों को इस्लामी कपड़े पहनाइए, ताकि दूसरे देखें और कहे वाह ये कैसे। क्योंकि आप देखिए कि वही जो मैंने शुरू में बताया कि एक औरत को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो जाकर हिजाब को जला रही है। आप तो उनकी बिकनीज को नहीं जलाते, आप तो उनके गंद बला को देखकर नहीं आवाज उठाते, तो वो आपके दुपट्टे कपड़े बुरके और नमाजों और दाढ़ियों को जलाए। आप में एतमाद ही नहीं। आज मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों को बुजदिल बनाते हैं, नाना बेटा बात ना करना, तरीके से करनी कैसे और क्या कहना है यह अहम है, लेकिन चुप नहीं रहना, ये भी बात जहन में रखने की है। क्या फरमाया फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से, कहा क्या तुम सुन नहीं रहे, यानी उसको तो गुस्सा आ गया ना, देखो देखो ये क्या बोल रहा है, यानी चिड़चिड़ा रहा है। हजरत मूसा ने फरमाया वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा लोगो तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया तो यकीनन दीवाना है। उस वक्त भी पुलिस आई होगी, पकड़ के ले गई होगी कि तुम ये क्या शोर मचा रहे हो और तुम ये क्या टेररिज्म फैला रहे हो, लेकिन मूसा को कोई परवाह नहीं। कितने प्यार से जहनी जिहाद कर रहे हैं मूसा, आज इसकी जरूरत है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया मशरिक व मगरिब का और इनके दरमियान की तमाम चीजों का रब अल्लाह है, अगर तुम अक्ल रखते हो। फिरौन कहने लगा सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो तुझे कैदियों में डाल दूंगा। थ्रेट, आज भी ये थ्रेट है, हम आपको डिपोर्ट कर देंगे, आपकी आवाज बंद कर देंगे, आप जैसे मुबल्लिगीन को हम निकाल देंगे इन मुल्कों से। इसी खौफ की वजह से आज कितने लोग हैं कि जो मिंबरों पे आकर भी हक नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका वीजा निकल जाएगा। हाँ, तो फिर आपको जरूरत क्या आपको वहां जाने की, फिर आप ये काम छोड़िए और जाकर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे सब्जी बेचिए। याद रखिए वो यहाँ बैठे कि जिसको हुक्म अज़ां याद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार। बंदा मोमिन दुनिया के किसी कोने में चला जाए वो अल्लाह का नुमाइंदा बनकर खड़ा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगरचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज ले आऊं, बिल्कुल आपको लग रहा है कि मूसा को हार रहे हैं, उसकी बात के जवाब में तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। फिरौन ने कहा अगर तू सच्चों में से है तो इसे पेश कर। बस उन्होंने अपनी लाठी डाली तो वो इसी वक्त एक सरीख अजदहा बन गई यानी कोबरा, और अपना हाथ खींच निकाला तो वो भी इसी वक्त देखने वालों को सफेद चमकीला नजर आने लगा। एक सांप और दूसरा चमकता हुआ हाथ, ये है तरगीब और तरहीब, रगबम व रहबन, यानी एक तरफ इंजार है और एक तरफ तबशीर है। दावत बड़ी बैलेंस होनी चाहिए, ये नहीं कि सुनने वालों की जान ही निकाल दो, खून ही खुश कर दो उनका, ये भी हराम ये भी गलत, तुम भी जन्मी तुम भी फलाफो भी, और दूसरी तरह ये भी नहीं कि सिर्फ मीठी चमची की लोरियां देते रहो और मीठा मीठा दीन, ये चीज नहीं नहीं छोड़ दो, ये इस्लाम में नहीं, नहीं आज के दौर में नहीं। हाँ ये वैसे अच्छी बात है, ये ले लो, इस्लाम पिक एंड चूज नहीं देता। इस पूरे तर्जमे को मुझे पढ़ना है, मेरा हक है, मेरा फर्ज भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है, इसमें से मुझे उसको उसी टोन में पढ़ना है जिसमें अल्लाह ने पेश किया। यहाँ बैठकर अल्लाह में ख्यानतों से बचाए और अल्लाह तला में दीन के नाम पर बेदीनी से बचाए। तो फेथ इन एक्शन बड़ी सिंपल आयतें हैं, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभानी है, किसी की जाहरी शख्सियत से मरूब नहीं होना, हर तरह की नेकी करनी है चाहे वो मुश्किल ही क्यों न लगे। अब देखिए अब उसका अगला स्टेप आपके जहन में तरतीब बन रही है ना, फिरौन मूसा दोनों आमने सामने थे, अब अगला स्टेप है फिरौन कह रहे ये मूसा को क्या हो गया, ये तो मेरे टुकड़ों पे पला था और आज मेरे आगे मुंह उठा रहा है, अच्छा जरा मैं इसको करता हूँ, ये क्या जदे बैजा और ये क्या चमकता हुआ हाथ और रसा लाया, ये तो जादू होगा, चलिए हम भी इसका तोड़ करते हैं। अब सेकंड स्लॉट है गेम का, रुकू नंबर 3, 34 से 51, हजरत मूसा अलैहि सलाम का जादूगरों से जिहाद। قال للملائ حوله ان هذا لساحر عليم, अपनों पे शक कर रहे फिरौन, देखिएगा फिरौन अपने आसपास के सरदारों से कहने लगा भाई ये तो कोई बड़ा दाना जादूगर है, ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से ही निकाल दे, बताओ अब तुम क्या हुक्म देते हो। इन सब ने कहा आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हर कारे भेज दीजिए जो आपके पास जे इल्म जादूगरों को ले आए। फिर एक मुकर्रर दिन के वादे पर तमाम जादूगर जमा किए गए और आम लोगों से भी कह दिया कि तुम भी मजमे में हाजिर हो जाओगे, ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाएं तो हम इनकी पैरवी करें। जादूगर आकर फिरौन से कहने लगे अगर हम जीत गए तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा, इस पे पहले बातें हो चुकी हैं। फिरौन ने कहा हाँ, बल्कि ऐसी सूरत में तुम मेरे खास दरबारी बन जाओगे, खरीदना चाह रहे इनको। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जादूगरों से फरमाया, जो कुछ तुम्हें डालना है डाल दो। मूसा का एतमाद, कॉन्फिडेंस। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी और कहने लगे, इज्जत फिरौन की कसम। ये बिल्कुल वही जुमला है जिसको आज हिंदू धर्म में कहते हैं जय फुला, जय जय का लफ्ज बोलते थे, यहाँ वही लफ्ज है उर्दू में। अच्छा, और हम इसको क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब हजरत मूसा ने भी अपनी लाठी मैदान में डाल दी, जिसने इसी वक्त इनके झूठ मूठ के करतब को निगलना शुरू कर दिया। ये देखते ही जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए और उन्होंने साफ कह दिया, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर। फिरौन ने कहा कि मेरी इजाजत से पहले तुम इस पर ईमान ले आए, यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा सरदार है जिसने तुम सबको जादू सिखाया, बस तुम्हें अभी अभी मालूम हो जाएगा। कसम है मैं अभी तुम्हारे हाथ पांव उल्टे तौर पर काट लूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। हर दौर में दावते हक कहने वालों को थ्रेट मिले, आप दबगे वो और दबाएंगे, आप खड़े होगे वो डर जाएंगे, बस यही असूल है। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यह है रिवर्ट्स का ईमान, न्यू मुस्लिम्स। इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने हैं, हमें उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हमारी सब खताएं माफ फरमा देगा। उनको कैसे पता चला? पहले से मूसा की दावत उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। तीन आयात ईमान से मुतल्लिक, 47, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, और दिल बदल गए। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह मेरा दिल बदल दे। आज दुआ करके उठिएगा, अल्लाह मेरा दिल बदल दे, क्योंकि आगे दिल की एक बड़ी प्यारी आयत भी आने वाली है। और शुरा 49, हर दौर का फिरौन अपनी इताअत चाहता है और जरा सा कोई उससे पर मारे तो कहते हैं कि तुम्हें जरूरत कैसे हुई। शोरा 51, साबिकून अल अव्वलून की मिसाल जादूगर बन गए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, इन्ना नतमो यगफिर लना रब्बुना खताया इन कुन्ना अव्वल मोमिनीन। अल्लाह हमें ऐसा ईमान पारे के दौरान ही दे दे, जहां कोई बात अमल की मिली हैंड्स अप, बस आज के बाद मैं नहीं करूंगी, ये करना हैंड्स डाउन, आई विल डू इट, सरेंडर सबमिशन। और नया नया ईमान ही कैच करा लेना तो काम आ जाता है, वरना बाद में तो बंदा आदी हो जाता है। वो ईमान कबूल करते थे तो मुसलमान होते थे, आज हम मुसलमान कुरान कबूल करेंगे तो मुसलमान होंगे। तो इस वक्त आप और मैं क्या कबूल कर रहे हैं? कुरान कबूल कर रहे हैं। अल्लाह हमें इसको पूरा लेने वाला बना दे। फेथ इन एक्शन, तनकीद हो या तारीफ, काम करते जाना है। हक बात जहां से मिले फौरन कबूल कर लें। सख्त हालात में भी दावते हक से पीछे नहीं हटना। और रुकू नंबर 4, 52 से 68, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आइए मूसा की जिंदगी से पढ़ते हैं। वौहैना इला मूसा नस्री बी वादी इन्नकुम मुत्तबऊन, और यहाँ एक दुआ भी कीजिए, अल्लाह अहले गज़ा को अकेला ना छोड़ना, अल्लाह उनको हम 2 बिलियन मुसलमानों के हाल पे ना डालना, तो खुद ही उनको काफी हो और हमें भी तौफीक दे। और हमने मूसा अलैहि सलाम को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फिरौन ने शहरों में हरकारों को भेज दिया, मैसेंजर्स, और यकीनन ये गिरोह बहुत कम तादाद में है। ये नोट के हक वाले हमेशा थोड़े होते हैं, और इस पर ये हमें सख्त गजबनाक कर रहे हैं, यानी ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं। और यकीनन हम बड़ी जमात हैं, इनसे चुकन्ना रहने वाले, यानी वी आर सो वेल अवेयर, हमारी सीआईडी बड़ी मजबूत है, हमने इनके घरों में कैमरे लगाए हुए हैं जी, हम इनके फला फला एड्रेस चेक कर रहे हैं। आज भी मुसलमानों को ये थ्रेट दिया जाता है, उनके फोन चेक हो रहे हैं, उनकी कॉल हो रही है, वो ये कर रहे हैं। याद रखिए, ऐसी कोई बात सुने उसको फौरन डिलीट कर दे, डोंट स्प्रेड द क्योस। जो थोड़ा बहुत ईमान होता है वो भी लुढ़कता फुड़कता निकल जाता है, वो फलां जगह एक औरत का हिजाब खींचा गया, अच्छा फिर मैं निकाल के घर ही छोड़ जाऊँ, ये कावर्डनेस है, बुजदिली है। कल वो कपड़े उतारने को कहेंगे तो उतार देंगे आप, और उनको नहीं शर्म आती बगैर लिबास के बाहर आते हुए, तो आपको लिबास के साथ शर्म क्यों आती है? वो हैवानियत है, ये इंसानियत है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जरूरत नहीं है, वरना बात तो और कोई भी नहीं है। अब जरा ये इन आयतों का जो दर्द है ना, इसको कभी तिलावत में सुनिएगा। फिरौन डूबा, फिरौनी डूबे, अब घर पीछे खाली, वो मोहल्लात, वो कासल्स, वो शातो, वो उनके बंगले विले सब खड़े हैं, हवेलियां खड़ी हैं। अल्लाह का कमेंट सुनिए, बिलाखिर हमने इन्हें बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मुकामात से निकाल बाहर किया। इसी तरह हुआ और हमने इन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। किसी भी दबी हुई मजलूम कौम को अल्लाह ने अरूज दे दिया और पस फिरौनी सूरज निकलते ही इनके ताकुब में निकले। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, यानी पीछे दुश्मन आगे दरिया, तो मूसा के साथियों ने कहा, हम यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, यकीन मानो कि मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। ऐसे लीडर्स चाहिए आज सर उठा के जीने वाले। हमने मूसा अलैहि सलाम की तरह वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। बस इसी वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मिसल बड़े पहाड़ के हो गया और हमने इसी जगह दूसरों को नजदीक ला खड़ा कर दिया, यानी दुश्मन आमने सामने आ गए। और क्या हुआ? और मूसा अलैहि सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को हमने निजात दी, फिर और सब दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इस पे बड़ी इबरत है और इनमें अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। और बेशक आपका रब बड़ा ही गालिब और मेहरबान है। देखिए डुबोने की बात है और अल्लाह क्या कह रहे हैं, मेहरबान। एक कौम पे जुल्म है ना, तो दूसरी मजलूम भी है। याद रखिए अल्लाह दोनों का रब है, ये मुराद है इससे। एक आयत ईमान से मुतल्लिक 67 शोरा, हक सबको दिखता है, मानते वो हैं जिनके दिल में तासुब ना हो। फेथ इन एक्शन, किसी को अपने आप से हकीर नहीं जानना। अल्लाह ताला से हर काम में हिदायत की दुआ करते रहना है। कामयाबी मिल जाए तो इनके सारी का रवैया रखना है। अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना, दुआ करिएगा अपने लिए, अल्लाह मुझे मिस्कीन बना दे, अंदर से मुझे छोटा बना दे, बाहर जो इज्जत तू देना चाहे, अंदर से टूटे रहा करें, कमजोर कच्चे। अल्लाह के आगे रोएं तो फकीरनियां बन जाए, ये रात की मनाजात में होता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासियती बियदिक। आगे देखते हैं, अब मूसा का किस्सा खत्म। मूसा जीत गए, कामयाब हो गए, नसरु मिनल्लाहि व फतहुन करीब हो गई। जिहादन कबीर मूसा ने कर लिया, कोई तलवार उठाई मूसा ने नहीं, नौबत ही नहीं आई, बस अपनी कौम को लेके जा रहे थे। अल्लाह ने तलवारों से जो काम नबी की उम्मत से लेना था वो अल्लाह ने समंदर के पानी से ले लिया, क्योंकि वो हर चीज पे कादिर है। अब एक और कहानी, रुकू नंबर 569 से 104, हजरत इब्राहिम की मार्फत रब्बानी, ये लीजिए। जिसको अल्लाह की मार्फत मिल गई ना, उसको उसकी बात मानना भी आसान और उसकी नाफरमानी से रुकना भी आसान। वतलु अलैहिम नबा इब्राहिम, इन इब्राहिम अलैहि सलाम का वाकया भी सुना दीजिए, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो, ये है जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। किसके जरिए? सुहुफ इब्राहिम व मूसा। आज जैसे हमें कुरान से जिहाद की दावत दी है ना, तो मूसा को तौरात के जरिए तौरात में लाओ। 40 साल वादिये तीखे थे, उसमें तौरात सिखाई थी कि ओ बुज़दिलो उठो, इमालका कौम से जिहाद करो, नहीं करे चलो बैठो तौरात पढ़ो। वो तौरात 40 साल पढ़ी तो उससे ईमान आया, तो हाथ उठे और जाकर बैतुल मकदस को फतह किया यूश बिन नून की मैयत में। आज भी यही होगा। इस उम्मत को कुरान पढ़ाइए, ये खुद ही इंशाल्लाह कलम के साथ तलवारें पकड़ेंगे। और जो उम्मत कलम खरीदने पे पैसा लगा लेती है ना, इल्म की, दीन की, इस्लाम की नशो इशात पे और दीन सिखाने सीखने की चीजों पे खर्च कर देती है ना, उसको फिर तलवारें नहीं पकड़नी पड़ती और आज के रॉकेट लॉन्चर नहीं खरीदने पड़ते, क्योंकि काफिरों का कुफर खत्म होगा। सारी तलवारें मुसलमानों को माले गनीमत में मिल जाएंगी। आज जितना गैर मुस्लिम का असलहा है ना, जितनी उनकी टेक्नोलॉजी, कल मुसलमानों के नाम आएगी। जैसे शादी के बाद एक औरत अपने शौहर के माल में बिला शिरकत गैर शामिल हो जाती है, मिसिस फलां बन के। आज इस सबक को पढ़ने की जरूरत है। ये रिसोर्सेस सारे आपके हैं, कल वक्त आने का इंतजार कीजिए। अपने आप को पुख्ता करें, हम दूसरे को कोसते रहते हैं और अपने आप को, हमें कुछ पेट का पानी नहीं हिलाना आता। काम करने को हम तैयार नहीं, मेहनत करने का हमें शौक नहीं, और ज्यादा ज्यादा इबादत और इफ्तारियां। और वो इफ्तारियों में जो होता है, कल रात का जो मंजर देखा हुआ है, अरे दिल से दुआ है कि अल्लाह, जो लोग पैसा खर्च करते हैं इफ्तारियों पे, उनके एक एक चावल के दाने और एक एक रोटी के टुकड़े और एक एक फ्रूट की तू कदर करना। अल्लाह के बंदो, आप सबको भी कहूंगी, आप किसी भी मस्जिद में जाएं इफ्तारी में, एक चावल का दाना न जाया करें। अगर बच के साथ ले जाए, उतना डालिए जितना खाना है। ज्यादा हो गया, लोग कहते हैं ले जाए, ले जाए घर जाकर खाएं। मुझे नहीं समझ आता कि ये सवाब से ज्यादा गुना वाली बात तो नहीं बन जाती कि माले मुफ्त दिले बेरहम। इस तरीके से, और दो दो हाथ से वो लाने वाले तो एक जज्बे के साथ ला ही रहे हैं ना, आप तो उनकी कदर करें। तो बहरहाल इतना पैसा, मैं कल सोच रही थी कि अगर इतना पैसा, कम से कम $5,000 लगा होगा कल जिस मस्जिद में हम लोग इन्वाइटेड थे और वहां इफ्तारी थी, अल्लाह उनका कबूल करे। और मैं सोच रही ये 5,000 ये जितना खाना इधर लगा, ये गजा में जाता तो हो सकता है पूरी उनकी बस्ती के लोग खाना खा लेते हैं, वहां भी भेजिए। इधर इस दफा खजूर पानी की इफ्तारियां करें, रुखी सुखी खाए, खिलाएं अपने बच्चों को वही 18 लोगों के हिस्से का एक ऊंट और एक चूर की गुठली, बच्चों को आज एक गुठली दीजिए कि बस यही आपकी इफ्तारी। फिर आएगी रूह जिहाद, इतने खाने खा खा कर तो अकल भी मोटी होगी और आंखें भी जरो, फिर कहते क्या बनाएं भाई, नहीं बच्चों की इफ्तारी बनानी है, कुरान नहीं सीख रहे, आप दौरे कुरान छोड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको इफ्तारी बनानी है, तो जाहिद हम भी जिहादन कबीरा, फिर अल्लाह ताला हमारे पर्दे रख ले। इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य भी सुना दीजिए, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो, उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, वो देखिए कितने धड़ल्ले से कह रहे हैं बुतों की करते हैं, तो आप क्यों नहीं कहते कि अल्लाह की बात मानते हैं, हम तो बराबर इन पर मजावर बने बैठे हैं। आपने फरमाया जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते हैं, दैट इज जाहिद हम भी जिहादन कबीरा, इंटेलेक्चुअल जिहाद। आपने बच्चों को जुबान दीजिए प्लीज, उनको गूंगे ना बनाए, उनकी इंग्लिश अच्छी है, वो आंखों में आंखें डाल के प्यार से मोहब्बत से बात कर सकते हैं। वाई मी, वाई वी, वाई इट्स फॉर मुस्लिम्स ओनली, इज इट फेयर, बस ये दो चार जुमले सिखा दें, शोर को बेदार करेंगे, अल्लाह ताला दिल खुद ही खोल देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल बाप की धमकियों से डरते हुए नहीं दिख रहे। अच्छा ये बताओ क्या ये सुनते हैं या तुम्हें कुछ नफा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, उन्होंने कहा ये हम कुछ नहीं जानते। स्टबल हो गए, हैरान तो हो गए हैं लेकिन तासुब है ना, हाँ हमें नहीं पता कुछ, अच्छा हमने तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाए, ये है प्रॉब्लम। आज भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम, यकीन कीजिए वो उसी तरह के रस्मी क्रिश्चियन है जैसे हम रस्मी मुसलमान है, वो इसी तरह के रस्मी हिंदू है जैसे हम रस्मी मुसलमान है, वो इसी तरह के रस्मी यहूद है जैसे हम है, सारे बुरे नहीं है, ये जो जायनिस उस गिरोह को पहचानी है, ये है वो फितने फैलाने वाला गिरोह जिसने दूसरों को भी बदनाम किया। कहते ना कि एक मछली सारे जल को गंदा करती है, तो अल्लाह ताला ने ये आयतें बताकर दिया कि हजरत इब्राहिम का दौर लेकर नबी के दौर तक के लोग जहां ये आयतें उतरी थी उनका प्रॉब्लम क्या था, एंसेस्टर वर्शिप, बाप दादा के नाम पे गलत काम करना। और आपने फरमाया कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूज रहे हो, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा वो सब मेरे दुश्मन है, यानी तुम पूजो मैं नहीं पूजता, मैं इम्प्रेस नहीं हूँ तुम्हारी इस बात से, मैं तुम्हारी इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ। इन्फ्लुएंसर तो बनते हो, जरा देखो कि तुम किस चीज का इन्फ्लुएंस दे रहे हो। आज जितना सोशल मीडिया पॉपुलर है लोगों के अंदर अपना प्रेशर देने में, आप अपने बच्चों से कहिए बनिए आप इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर, और क्या कुछ नाम है आज, इस्लाम का इन्फ्लुएंस दिखाइए। हम इन चीजों को सिर्फ अपने कपड़े जूते लत्तों के लेकर बैठे हैं, और मैं दर्द के साथ बात करती हूँ, मुझे कोई किसी का पता भी नहीं होता, आज इफ्तारियों और बच्चों को यूथ को जमा करने का एक नया तरीका मुझे एक दो दिन पहले पता चला कि अपनी अपनी गाड़ी लेके आओ, फ्लॉन्ट करो उसकी लाइटें जलाओ, पंपी ग्लैमरी मेरी ये गाड़ी, फिर बैठो फिर हम तुम्हें छोटा सा एक दर्स सुनाएंगे, शो मारो आके अपनी गाड़ियों की और घड़ियां दिखाओ आके, तो फिर कहते नहीं इस तरह ना करें ना तो यूथ नहीं आती, ये कर्तव्य दिखाने के लिए हमने दीन सीखा। मैं बुरा नहीं कह रही, वल्लाही जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनकी नीयत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वैसे कहाँ आती है यूथ हमारी, वीकेंड में कहाँ आती है यूथ, शामों के दरसों में कहाँ आती है यूथ, उनके तो कुछ और ही काम है इस वक्त, जो दिल लेकर आता है ना उसको हिदायत मिलती है। तो ये ट्रैप करने वाली चीज नहीं है, उनके दिल खुद माने, एक दफा कुरान का पानी और कुरान का असल पैगाम आपकी यंग बच्ची के दिमाग पे पड़ जाए, आपसे ज्यादा ढूंढ ढांड के वो सीख लेगी इंशाल्लाह। तो ये गलत तरीकों से सही काम नहीं होते, ये भी याद रखिए। तो यहाँ उन्होंने यही कह दिया कि अच्छा ठीक है, बजुस अल्लाह ताला के जो तमाम जहान का पालने वाला है, जिसने मुझे पैदा किया है और वही मेरी राहबरी फरमाता है, वही मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शिफा अता फरमाता है। यहाँ से देखिए खुद कलामिया इतने बाधक थे, सारी गलत चीजें अपनी तरफ जोड़ रहे हैं और खैर अल्लाह की तरफ ले रहे हैं, और वही मुझे मार डालेगा फिर जिंदा करेगा, और जिससे उम्मीद बंधी हुई है कि वो रोजे जजा में मेरे गुनाहों को बख्श देगा, ऐ मेरे रब अल्लाह आज ये दुआ कबूल हो जाए, मैं तो अपने लिए कर रही हूँ आप अपने लिए कीजिएगा, मुझे कुव्वते फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे, और मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख, मुझे नेम तो वाली जन्नत के बारिशों में बना दे, रब्बी हबली हुक्मम वल्हिकनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसान सिदकिन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नति नईम। और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था, और जिस दिन के लोग दोबारा उठाए जाएंगे मुझे रुसवा न करना, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम ना आएगी। सोचिए इस दर्द को, लेकिन फायदे वाला वही होगा जो अल्लाह ताला के सामने बेऐब दिल लेकर आ जाए। और परहेजगारों के लिए जन्नत बिल्कुल नजदीक ला दी जाएगी, और गुमराह लोगों के लिए जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी। और इनसे पूछा जाएगा कि जिनकी तुम पूजा करते रहे वो कहाँ हैं, जो अल्लाह के सिवा थे क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या कोई बदला ले सकते हैं। बस वो सब और कुल गुमराह लोग जहन्नुम में उन्दे मुंह डाल दिए जाएंगे। और इबलीस के तमाम लश्कर भी वहां आपस में लड़ते झगड़ते हुए कहेंगे कि कसम अल्लाह की, यकीनन हम तो खुली गलती पर थे, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बैठे थे, और हमें तो सिवाय इन बदकारों के किसी और ने गुमराह नहीं किया था। अब तो हमारा कोई सिफारशी भी नहीं और ना कोई गमख्वार दोस्त। अपनी दोस्तों के लिए दुआ करें। अगर काश के हमें एक मरतबा फिर जाना मिलता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। ये माजरा यकीनन आपके लिए एक जबरदस्त निशानी है, इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, यकीनन आपका परवरदिगार ही गालिब मेहरबान है। ईमान से मुतल्लिक दो आयतें, शोरा 102, मुनकरीने हक की हसरतें, क्या कि एक बार हमें दुनिया में दोबारा भेजा जाए तो हम ठीक हो जाएं। और शोरा 103, बिगड़े से बिगड़े माहौल में भी हिदायत की शम्मा जलाई जा सकती है, इसलिए डोंट लूज होप। आज के दौर में मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, मुस्तकबिल इस्लाम का ही रोशन है इंशाल्लाह। फिर आप देखिए आयत 89 में लफ्ज आया, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जो अल्लाह के सामने सलामत दिले क्या है, टूटा बानी सालम। किसी को केक भी देते हैं तो सालम देते हैं, टूट गया तो बेइज्जती होगी, खराब ना दें, टूटे हुए बर्तन नहीं देते। कल्बे सलीम कौन सा है? कुफर से पाक, शिर्क से पाक, बिदत से पाक, निफाक से पाक, बुग़्ज़ और हसद से पाक, इखलास वाला, इल्म वाला और यकीन कामिल रखने वाला। और इस दिल को तोड़िए अल्लाह की मोहब्बत में नाइट सेशंस के जरिए मार्फत इल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों को सलामत रखे। फेथ इन एक्शन, अपने दौर के बुतों को पहचानना, अल्लाह से नेकी करने और हिकमत की दुआ करनी है, माजी की कौमों पर जिन गुनाहों की वजह से अजाब आए इनसे बचना है। और आगे अब आखिरी नबी, यहाँ आपने देखा उलट तरतीब है, पहले हजरत नूह से शुरू होती थी बातें, आज वो क्रॉनिकल ऑर्डर नीचे से, जैसे ए टू जी से बजाय जी टू ए वाली सूरत आपको दिखी, रुकू नंबर 105 से 122। हजरत नूह का जिहादन कबीरा, कज्जबत कौम नूहिल मुरसलीन, कौमे नूह ने भी नबियों को झुटलाया, जबकि इनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं, सुनो मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का ईमानदार रसूल हूँ, तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं चाहता, मेरा बदला तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के हाँ है, बस तुम अल्लाह का खौफ रखो और मेरी फरमाबरदारी करो। कौम ने जवाब दिया क्या हम तुझ पर ईमान लाए, तेरी ताबेदारी तो रजील लोगों ने की है। यानी वही धान के पान, एक ही कहानी कि गरीब क्यों आते, अमीर क्यों नहीं आते, और अमीर क्यों आते और गरीब नहीं आते। तो इस्लाम किसी क्लासिफिकेशन को पसंद नहीं करता। आपने फरमाया मुझे क्या खबर कि वो पहले क्या करते रहे, पिछली जिंदगी के ताने दिलवा रहे थे। हजरत नूह ने उसकी तरफ बात ही नहीं की, हमें भी किसी को पिछली जिंदगी के ताने नहीं देने चाहिए। इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है अगर तुम्हें शऊर हो तो। मैं ईमानदारों को धक्के देने वाला भी नहीं, मैं तो साफ तौर पर डरा देने वाला हूँ। उन्होंने कहा ऐ नूह अगर तू बाज ना आया तो यकीनन तुझे संसार कर दिया जाएगा। आपने फरमाया मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने मुझे छुटला दिया। एक अल्लाह वाला बंदा हाथ उठाता है पूरी कौम तबाह कर दी जाती है। इसलिए कभी किसी अल्लाह वाले का दिल नहीं तोड़ना, कभी उसके मुंह नहीं लगना। इस कौम ने हजरत नूह को मजबूर कर दिया कि वो इनके लिए बददुआ करे। क्या है बददुआ के लफ्ज़, बस तू मुझ में और इनमें कोई कतई फैसला कर दे, और मुझे और मेरे ईमान वाले साथियों को निजात दे दे। ये है नस्रु मिन अल्लाह व फतहुन करीब। चुनाचे हमने इसे और इसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करा के निजात दे दी। इसके बाद इन बाकी तमाम लोगों को डबो दिया। यकीनन इसमें बहुत बड़ी इबरत है, और इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले थे भी नहीं। और बेशक आपका परवरदिगार अलबत्ता वही है जबरदस्त रहम करने वाला। अल्लाह पे भी रहम कर दे। चार आयात ईमान से मुतल्लिक, शोरा 111, दौलत के नशे में चूर लोग हक को नहीं देख पाते। 114 शोरा, ईमान वाला अल्लाह से डरता है लोगों से नहीं। 118 शोरा, और हुज्जत तमाम हो गई। इत्माम हुज्जत के बाद ही अजाब आते हैं। शोरा 121, सच्ची दावत देने वाला थकता नहीं क्योंकि उसके दिल में बखा होता है। फेथ इन एक्शन, किसी को इसके पेशे की वजह से हकीर नहीं जानना। अक्सरियत की पैरवी में हक से दूर नहीं होना।